पृष्ठ संख्या 48। साहित्यकार की आर्थिक स्वतंत्रता और विचारों एवं मान्यताओं की दृष्टि से उसकी स्वतंत्रता एक अहम सवाल है। अगर यह स्वतंत्रता नहीं है, तो लेखक का व्यक्तित्व कुंठित होता है, क्योंकि समझौते अनिवार्य रूप से उसके व्यक्तित्व को तोड़ते हैं। साहित्यकार को इतनी स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए कि वह राजनीतिज्ञ की गलत स्ट्रेटजी को गलत कह सके, उससे असहमत हो सके, क्योंकि स्वतंत्रता ही उसकी रचना को शक्ति देती है। कहना न होगा कि राकेश ने कालिदास के माध्यम से एक साहित्यकार के इस मानसिक द्वंद्व को सृजनशील व्यक्तित्व और परिवेश, कलाकार और राज्य की आपसी टकराहट को व्यक्त करना चाहा है। कालिदास के सामने भी राज्य द्वारा दिए गए सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का उससे अधिक उससे उत्पन्न विरोधी स्थितियों का प्रश्न है। यही नहीं कि उसे राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, बल्कि प्रश्न उसी स्वतंत्रता का साहित्यकार के व्यक्तित्व और अधिकार का है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। यह पंक्ति लेखक के रचना दायित्व और उसके स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्रता की गहरी इच्छा को ही अभिव्यक्त करता है। उसे डर है कि राज्याश्रय और सम्मान स्वीकार करने पर कहीं वह अपने ग्राम प्रांतर अपनी वास्तविक भूमि से उखड़ न जाए, दूसरे जीवन की अपेक्षाओं से बंध न जाए। अपने लेख में ही राकेश ने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक लेखक राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग करता हुआ अपने व्यक्तित्व और विचारों की स्वतंत्रता को बनाए रख सके और उस पर कोई ऐसा दायित्व न पड़ता हो जिससे लेखक के रूप में उसकी आवाज कमजोर होने लगे, तो उसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए निश्चित रूप से सारी प्राप्त सुविधाओं की तुलना में लेखक का व्यक्तित्व ही अधिक महत्वपूर्ण है। कालिदास भी अनुभव करता है कि एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। उसे बार-बार लगता है कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में जैसे उसने अनाधिकार प्रवेश किया है। वर्तमान समय के लेखक और आज के मनुष्य के द्वंद्व को ही जैसे ध्यान में रखा गया है, आज के लेखक के सामने आर्थिक संकट सबसे बड़ी समस्या है। कश्मीर का शासन संभालने में अपने को स्पष्ट करते हुए कालिदास भी कहता है, अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। साथ ही नाटक के आरंभ में ही लेखक और व्यवस्था, स्वाभिमान और सत्ता के अधिकारों की टकराहट से उत्पन्न कचोट भी कालिदास में दिखाई है। जैसे उस तरह के सारे उपहास और तिरस्कार का बदला लेने के लिए वह कश्मीर का शासन संभाल लेता है। निक्षेप से प्रथम अंक में ही दो बातें कहलाई गई हैं, एक योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, दूसरी उनके हठ के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। सत्य यह है कि कालिदास के चरित्र चित्रण में स्वयं राकेश की, उनके अपने व्यक्तित्व की, द्वंद्वों की, शंकाओं और प्रश्नों की ही अभिव्यक्ति हुई है। पृष्ठ संख्या 49। उस पर राकेश के निजी व्यक्तित्व की बड़ी गहरी छाप है, एक भावुक कोमल रोमांटिक मन भी। आज के लेखक का अपने को बनाने और प्रतिष्ठित करने का संघर्ष भी, जैसे मल्लिका कहती है, यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं, और सामान्य की कसौटी पर परखा जाना स्वयं राकेश के लिए असंभव था। निक्षेप भी कहता है, राजकवि का शासन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है, जीवन भर वहीं रहेंगे। एक स्थानीय कवि, यह दूसरों की ही दृष्टि नहीं है, यह द्वंद्व राकेश के मस्तिष्क में भी रहा है, और राकेश ने अपने को एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्ष किया ही, और नाटक क्षेत्र में अपनी मौलिकता और वैशिष्ट्य की छाप छोड़ी ही। राजकीय सम्मान स्वीकार करने से पहले यह चिंता की नई भूमि शिखा भी तो हो सकती है, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। आगे चलकर कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल दूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। क्या ये सब लेखक की आत्म अभिव्यक्ति नहीं है? राकेश की डायरी के पन्नों में भी यही कुछ है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुभार अपने को ढालना, यह केवल आत्मघात की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रह सकती है, परंतु कुछ ऐसा क्रम है रोज की जिंदगी का कि यह सब अनजाने में होता चलता है। अपने को समान रूप से बांट पाना राकेश के संबंध में एकदम अविश्वसनीय सत्य है। जो छूट गया उसकी कचोट, जो आने वाला कल है उसकी प्रतीक्षा, राकेश का निजी स्वभाव रहा है। वह कालिदास में भी है। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। यह खंडित होता टूटता हुआ व्यक्तित्व एक सृजनशील साहित्यकार का, राकेश का, आधुनिक मानव का, तीनों स्तरों पर सत्य है। परिस्थितियों के दबाव में तीनों की समान स्थिति होती है। ये सारे प्रश्न द्वंद्व इस नाटक को आधुनिक बनाते हैं, लेकिन कालिदास के चरित्र को लेकर कई तरह की आपत्तियां उठी हैं। कुछ लोग कालिदास और मातृगुप्त को एक ही मानते हैं, क्योंकि इसी आधार पर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में कालिदास की कल्पना की है, लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते। वस्तुतः सत्य तो यह है कि कालिदास के संबंध में प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, अधिकतर सामग्री अनुमानिक है। कुछ लोग कालिदास में उस महान कालिदास की प्रतिमा ही देखना चाहते हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि एक चरित्र प्रतिमा को जानबूझकर खंडित करने का प्रयत्न किया है। लेकिन राकेश ने स्वयं भी अपने उत्तरों में स्पष्ट किया है कि न तो इस नाटक को कालिदास का इतिवृत्त या आख्यान मानना ठीक होगा, और न अपनी संस्कारगत भावना के आधार पर कालिदास में महाकवि कालिदास की प्रतिमा को ही देखना उपयुक्त होगा। संदर्भ 1, नटरंग 21, डायरी के पन्नों से पृष्ठ संख्या 14। पृष्ठ संख्या 50। बल्कि नाटक की रचना एक समसामायिक परिस्थिति को उसकी अपनी नाटकीयता में अभिव्यक्त करने के लिए हुई है, इसीलिए इसे इतिहासगत या संस्कारगत संदर्भ से अलग रखकर इसके साथ न्याय किया जा सकता है। लेकिन दूसरे प्रकार की आपत्तियां कालिदास में एक सृजनशील व्यक्तित्व के अभाव को लेकर है, और वह बहुत सही है। यद्यपि राकेश ने कहा है कि मेरे लिए कालिदास एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है, नाटक में वह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए है जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौण है। मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुतों को उसमें से गुजरना पड़ा है। हम भी आज उसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन कालिदास को अगर विश्व प्रसिद्ध सृजनात्मक व्यक्तित्व के रूप में देखें तो निराशा होती है। निसंदेह पूरे नाटक में कालिदास एक बहुत ही आत्म केंद्रित, भावुक, खंडित, दुर्बल मन स्थिति वाले और बड़ी ही स्वार्थ दृष्टि वाले व्यक्ति के रूप में सामने आता है। अगर सचमुच राकेश उसके द्वारा समस्त भारतीय सृजनात्मक प्रतिभा को किसी गहराई से प्रस्तुत करना चाहते थे और एक असाधारण सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद को दिखाना चाहते थे, तो उतना तीव्र संघर्ष कालिदास में कहीं दिखाई नहीं देता, और न ही कालिदास एक असाधारण सृजनशील व्यक्तित्व के रूप में प्रभावित कर पाता है। इसके कई कारण हैं। कालिदास नाटक के आरंभ में अपने प्रवेश के साथ प्रभावित करता है। उसकी सहृदयता, उदारता, भावुकता, संवेदनशीलता, कवि हृदय की कोमलता, लेकिन आत्माभिमान की चमक और दृढ़ता, और साथ साथ बड़ा तीव्र द्वंद्व। लेकिन इस अंक के अंत में ये सारे प्रभाव फीके पड़ जाते हैं। कालिदास का आंतरिक संघर्ष भी नहीं उभरने पाता और न उसके चरित्र के ही सबल पक्ष सामने आ पाते हैं, बल्कि राजकीय सम्मान और राज्याश्रय प्राप्त होने पर न चाहते हुए भी वह उज्जैनी चला जाता है। केवल भावुक क्षणों में कुछ कह कर और भींगी आंखों से मल्लिका से विदा लेकर, जबकि यहाँ बहुत अवसर थे कालिदास साहित्यकार के भीतर के विरोधी संघर्षों की पूरी तीव्रता के साथ दिखलाने के। परिणाम यह होता है कि मल्लिका अपने त्याग और समर्पण में महान लगने लगती है और कालिदास जैसा व्यक्ति उसकी तुलना में बहुत साधारण। आगे भी कश्मीर का शासक बनने पर कालिदास जब ग्राम प्रांतर आता है तो मल्लिका से मिलने नहीं आता, केवल इसीलिए कि कहीं यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं एक मूक प्रश्न न उपस्थित कर दें, और एक भय यह भी कि कहीं मल्लिका की आंखें मन को अस्थिर न कर दें, बिना यह सोचे कि मल्लिका पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे। कालिदास का चुपचाप चले जाना उनके मानव पक्ष को दुर्बल बनाता है। संदर्भ एक, आषाढ़ का एक दिन, भूमिका पृष्ठ संख्या 14। दो, लहरों के राजहंस, भूमिका पृष्ठ संख्या 8। पृष्ठ संख्या 51। अंत में भी जब वह आता है तो जैसे निरंतर अपने को स्पष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ और मल्लिका को अपनी सहानुभूति देता हुआ, अंत में भी उसका चुपके से चला जाना खटकता है। लगता है सामने आने वाली परिस्थितियों को फेस करने से वह कतराता है। आरंभ से अंत तक देखने पर नाटक में कालिदास की महानता और उसका असाधारण सृजनात्मक व्यक्तित्व कहीं स्थापित नहीं हो पाता, बजाय इसके कि कहीं-कहीं संवादों में उसके महान लेखक का परिचय मिलता हो, उल्टे उसके हीन मानव रूप का, दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति का रूप ही प्रमुख हो जाता है और उसकी तुलना में अंत में जाकर विलोम कहीं अधिक विश्वसनीय, स्वाभाविक और प्रभावशाली लगता है। विलोम कालिदास के व्यक्तित्व पर निरंतर हावी लगता है। क्या यह कालिदास के चित्रण की कमजोरी नहीं है? कालिदास के चरित्र के संबंध में नेमिचंद्र जैन की इस बात को सही मानना होगा कि अंततः नाटक में उद्घाटित उसका व्यक्तित्व न तो किसी मूल्यवान और सार्थक स्तर पर स्थापित ही हो पाता है, न इतिहास प्रसिद्ध कवि कालिदास को, और इस प्रकार उस माध्यम से समस्त भारतीय सृजनात्मक प्रतिभा को कोई गहरा विश्वसनीय आयाम ही दे पाता है। स्थिति स्केप कर जाने वाली लगती है, यह जरूरी नहीं है कि महान लेखक में महान गुण ही होंगे। दुर्बलताएं उसमें भी हो सकती हैं, लेकिन उन दुर्बल पक्षों में दबकर उसका असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व खो नहीं जाना चाहिए। कालिदास में ऐसा हुआ है। न तो यह स्पष्ट होता है कि कालिदास की सृजनात्मक चेतना के मूल स्रोत क्या हैं। राकेश के ग्राम प्रदेश, मल्लिका की प्रेरणा और राजपुरुष दंतुल से हुई बातचीत से उत्पन्न गहरी कटुता और चुभन को ही मूल स्रोत और द्वंद्व का कारण दिखाया गया है। लेकिन क्या इन स्रोतों का औचित्य नाटक में अंत तक सिद्ध हो सकता है? राकेश अगर इसका निर्वाह कर सके होते तो निश्चित रूप से यह नाटक अधिक आधुनिक, अधिक सार्थक और अधिक पैना तीखे यथार्थ वाला नाटक हो सकता। लेकिन उस गहराई तक न जाने के कारण नाटक भावुकतापूर्ण लगने लगता है। विशेषकर कालिदास की अनिश्चय दुविधा की स्थिति को लेकर। मगर मल्लिका मूल स्रोत है, जैसे कि अपने उद्घाटन भाषण में आगे उसने कहा भी है, तो उसने मल्लिका से इस प्रकार बचकर क्यों जाना पड़ा? जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं, वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। क्या यही उसकी सृजन पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है? मुझे वर्षों पहले यहाँ से लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। एक लेखक के अंदर की इस घुमड़ को ही, इसके स्रोतों कारणों को ही अगर संयम, संतुलन और गहराई से निभाया गया होता तो नाटक उस भावुकता को छूता हुआ न लगता जो उसमें है। कालिदास की द्वंद्व, संशय, अनिश्चय राकेश के स्वभाव की देन है। संदर्भ 1, नटरंग 21, मोहन राकेश के नाटक, पृष्ठ संख्या 35।